एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी रोजमर्रा की चीज के बारे में बात करने वाले हैं।
वो चीज है किताब। हम सबके पास होती है ना, घर में, स्कूल में, ऑफिस में।
हाँ बिल्कुल, हाथ में, बैग में, कहीं ना कहीं तो दिखी जाती है।
पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये असल में है क्या? मतलब सिर्फ कागज और छपाई या कुछ और भी?
यही सवाल दिलचस्प हो जाता है आज के जमाने में, खासकर जब हम एमरांत बोर्डसुक की किताब द बुक को देखते हैं।
हाँ, क्योंकि आज तो हम ज्यादातर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, है ना, फोन, टैबलेट, लैपटॉप। तो सवाल उठता है कि क्या कागज वाली किताब का जमाना गया?
बिल्कुल, और बोर्डसुक इसी सवाल का जवाब देती हैं, लेकिन बड़े अलग अंदाज में। वो कहती हैं, अरे रुको, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो, किताब की कहानी इतनी सीधी नहीं है।
अच्छा, तो क्या कहती हैं वो?
वो हमें दिखाती हैं कि किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये एक बदलती हुई चीज है, ये एक वस्तु भी है जिसे हम छूते हैं।
हाँ।
ये एक विचार भी है, मतलब ज्ञान या अधिकार का प्रतीक, और ये जानकारी तक पहुंचने का एक जरिया, एक तरह का इंटरफेस भी है।
वस्तु, विचार और इंटरफेस, ये कुछ सोचने वाली बात है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, किताब की इस छुपी हुई दुनिया को थोड़ा और समझते हैं। तो पहले ये बताइए, ये एमरांत बोर्डसुक हैं कौन? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है।
हाँ, मुमकिन है कई लोगों के लिए नया हो। देखिए, ये सिर्फ एक अकादमिक स्कॉलर नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन बॉथिल में प्रोफेसर हैं, पीएचडी है साहित्य में, ये सब तो है
जी।
लेकिन साथ ही, और ये मजे की बात है, वो एक कवयित्री और बुक आर्टिस्ट भी हैं।
बुक आर्टिस्ट, ये क्या होता है? मतलब वो किताबें डिजाइन करती हैं?
डिजाइन से भी आगे, वो ऐसी किताबें बनाती हैं जो पारंपरिक नहीं होती, प्रयोगात्मक। जैसे उनकी एक किताब है बिटवीन पेज एंड स्क्रीन।
अच्छा, क्या खास है उसमें?
खास ये है कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी कविताओं की किताब है, आप उसे यूं ही नहीं पढ़ सकते, आपको वेबकैम चाहिए उसे पढ़ने के लिए।
अरे वाह, ये तो कमाल है।
हाँ, या फिर उनकी एक और रचना है आबरा, वो एक डिजिटल कविता है जिसे आप अपने हाथ के इशारों से कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं।
गजब, मतलब वो सिर्फ थ्योरी नहीं लिखती बल्कि प्रैक्टिकल भी करती हैं।
एक तरफ किताब के इतिहास और भविष्य पर सोच रही हैं, दूसरी तरफ खुद उसे बना रही हैं।
बिल्कुल, और इसी वजह से उनकी बातों में एक वजन है, एक गहराई है। वो किताब के रूप यानी फॉर्म और उसके अंदर के कंटेंट के रिश्ते को शायद ज्यादा बारीकी से समझती हैं, क्योंकि वो सिर्फ रिसर्चर नहीं, क्रिएटर भी हैं।
सही बात है, इसी नजरिए से उन्होंने किताब लिखी होगी द बुक।
हाँ, और ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज का मकसद यही है कि मुश्किल विषयों को आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये कोई बहुत भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है। अच्छा, तो फिर ये किताब है क्या? इसका सार क्या है?
बोर्डसुक का मेन पॉइंट, या कहें कि मुख्य तर्क, ये है कि हम अक्सर किताब को बस एक कंटेनर की तरह देखते हैं, एक डिब्बा जिसमें शब्द भरे हैं।
हाँ,
हम उसके आर पार देखते हैं, उसे नहीं देखते।
हाँ, ये बात तो सही, हम कहानी या जानकारी पर ध्यान देते हैं, किताब पर नहीं।
हाँ, बोर्डसुक कहती है नहीं, किताब को देखो, उसकी बनावट, उसका वजन, कागज कैसा है, छूने में कैसा लगता है, यहां तक कि उसकी महक, ये सब चीजें मायने रखती हैं। ये सब हमारे पढ़ने के अनुभव का हिस्सा हैं और अंदर की सामग्री से जुड़े हैं।
मतलब किताब सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए भी है।
बिल्कुल, और इसे समझाने के लिए वो हमें इतिहास में ले जाती हैं, लेकिन किसी स्कूल की किताब की तरह नहीं कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ।
अच्छा, तो कैसे?
उन्होंने किताब को अलग अलग थीम में बांटा है, किताब एक वस्तु के तौर पर, फिर उसकी सामग्री और तकनीक कैसे विकसित हुई, फिर किताब एक विचार के तौर पर क्या मायने रखती है, और आखिर में एक इंटरफेस के रूप में वो कैसे काम करती है।
समझ गई, तो वो हमें मिट्टी की गोलियों से शुरू करके पेपिरस स्क्रोल, फिर आज की किताब यानी कोडेक्स, फिर प्रिंटिंग प्रेस और अब डिजिटल फाइलों तक ले जाती हैं।
हाँ, और उनका कहना है कि ये सफर रुका नहीं है, ई बुक कोई अंत नहीं है, बस एक नया चैप्टर है, हमें किताब के शरीर पर, उसकी फिजिकल फॉर्म पर ध्यान देना होगा।
चलिए, तो फिर इन थीम्स को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं किताब एक वस्तु के रूप में। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वो ठोस है।
नहीं, उससे ज्यादा बोर्डसुक इस बात पर जोर देती हैं कि किताब की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वजन, साइज, कवर, पन्ना का टेक्सचर, ये सब हमारे पढ़ने के अनुभव को बनाते हैं। सोचिए, एक भारी भरकम हार्ड कवर किताब हाथ में लेने का एहसास।
हाँ, या किसी पुरानी लाइब्रेरी की किताब की वो जानी पहचानी खुशबू।
बिल्कुल, ये अनुभव डिजिटल स्क्रीन पर नहीं मिलता। है ना? और ऐतिहासिक रूप से भी तो ये वस्तु बदली है, जैसे आपने कहा मिट्टी की गोलियां थी मेसोपोटेमिया में,
हाँ गीली मिट्टी पर लिखकर सुखा लेते थे,
और मिस्र में पपाइरस के पौधे से लंबे कागज बनते थे जिन्हें लपेट कर रखते थे स्क्रोल।
स्क्रोल के साथ क्या दिक्कत थी?
दिक्कत ये थी कि उन्हें एक सिरे से खोलना पड़ता था। अगर बीच का कुछ पढ़ना है तो पूरा खोलो या लपेटो, मतलब आप सीधे पेज 50 पर नहीं जा सकते थे। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस।
थोड़ा झंझट का काम था। समझ गई। फिर आया वो बड़ा बदलाव जिसे हम आज किताब कहते हैं, कोडेक्स। ये कैसे अलग था और कब आया?
कोडेक्स करीब पहली सदी में रोम में आया। ये सच में क्रांति थी। इसमें क्या किया गया कि पन्नों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर एक तरफ से सिल दिया या बांध दिया गया, बिल्कुल आज की किताबों की तरह।
और इसका सबसे बड़ा फायदा?
रैंडम एक्सेस, मतलब आप तुरंत कोई भी पन्ना खोल सकते हैं, पेज 10 से सीधे पेज 100 पर जा सकते हैं, आगे पीछे जाना, दो पन्नों की तुलना करना, बुकमार्क लगाना, सब आसान हो गया।
सोचिए जरा, इसने ज्ञान को जमा करने और इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया होगा, रिसर्च करना, लिखना, पढ़ना।
बिल्कुल, विद्वानों के लिए, कहानीकारों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई। और सिर्फ पन्ने ही नहीं, लिखने की चीजें भी बदली। पेपिरस की जगह जानवरों की खाल से बना चर्मपत्र यानी पार्चमेंट आया, फिर वेलम आया जो ज्यादा टिकाऊ थे,
और फिर कागज आया चीन से।
हाँ, कागज सस्ता और हल्का था, उसके आने से किताबें और ज्यादा फैली। लेकिन कोडेक्स का जो मूल डिजाइन था, बंधे हुए पन्ने, वो इतना कामयाब रहा कि आज 2000 साल बाद भी वही चल रहा है।
यहाँ तक कि हमारे ई रीडर्स भी तो पन्ने पलटने का एनिमेशन दिखाते हैं, उसी की नकल।
सही कहा। तो कोडेक्स की सहूलियत, उसका टिकाऊपन और वो हाथ में पकड़ने का एहसास, ये आज भी बहुत मायने रखता है।
ये तो हुई वस्तु की बात। अब आते हैं किताब की सामग्री और तकनीक पर। बोरसुक कहती हैं कि स्वरूप ही सामग्री को आकार देता है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, क्या मतलब है इसका?
इसका सीधा सा मतलब है कि किताब सिर्फ शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ट्रक नहीं है। किताब का डिजाइन, पन्ना कितना बड़ा है, अक्षर कैसे हैं, मार्जिन कितना है, तस्वीरें कहाँ हैं, कहाँ खाली जगह है, ये सब मिलकर उस टेक्स्ट का मतलब बनाते हैं या बदलते हैं।
जैसे अखबार में कोई खबर कैसे पेश की जाती है, उसका असर पड़ता है।
बिल्कुल। या सोचिए मध्ययुग की वो हाथ से लिखी पांडुलिपियां जिन्हें इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं।
हाँ, जिनमें खूबसूरत चित्र और डिजाइन होते थे।
उनमें लिखावट, चित्र, सोने का काम, सब मिलकर एक पूरी कलाकृति बनाते थे। और अक्सर पन्नों के किनारों पर यानी मार्जिन में छोटे छोटे चित्र या नोट्स होते थे। वो सिर्फ सजावट नहीं थे, वो मुख्य टेक्स्ट पर कॉमेंट्री हो सकते थे या कोई मजाक। वहाँ रूप और सामग्री एकदम घुले मिले थे।
वाह, मतलब मार्जिन की वो छोटी सी ड्राइंग भी कहानी का हिस्सा थी।
हाँ, फिर सोचिए प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। गुटेनबर्ग ने 15वीं सदी में जब इसे शुरू किया,
उसने तो ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचा दिया। हाँ, क्रांति ला दी।
हाँ, वो तो है, लेकिन उसने एक और चीज की, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। अब एक किताब की हजारों कॉपी बिल्कुल एक जैसी बन सकती थी, लेआउट, फॉन्ट, स्पेलिंग सब एक जैसा। इससे भाषाओं को भी स्थिरता मिली।
और लेखक का आइडिया भी शायद यहीं से मजबूत हुआ होगा कि ये टेक्स्ट उनका है।
सही कहा, एक निश्चित संस्करण का विचार आया और प्रिंटर का कंट्रोल बढ़ गया कि किताब दिखेगी कैसे।
क्या लेखक खुद भी इस रूप के साथ खेलते रहे हैं, मतलब जानबूझकर डिजाइन का इस्तेमाल करते रहे?
अरे हमेशा से। 18वीं सदी के एक लेखक थे लॉरेंस टर्न, उनका उपन्यास है ट्रिस्टरम शैंडी, उसमें आपको अजीब अजीब चीजें मिलेंगी।
जैसे कि?
जैसे एकदम खाली पन्ने छोड़ दिए हैं, कहीं संगमरमर जैसा पैटर्न वाला पन्ना डाल दिया है, एक पूरा पन्ना काला है, अध्यायों का क्रम भी गड़बड़ है, टाइपोग्राफी के साथ भी बहुत प्रयोग किए हैं।
क्यों किया उन्होंने ऐसा?
वो जानबूझकर पाठक का ध्यान किताब की बनावट पर खींच रहे थे, उसे कहानी का हिस्सा बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ कहानी नहीं, एक भौतिक वस्तु भी है। तो ये कोई नई बात नहीं है।
दिलचस्प। तो हर टेक्नोलॉजी बदलाव, स्क्रोल से कोडेक्स, फिर प्रिंटिंग, अब डिजिटल ने बस संभावनाएं बढ़ाई हैं।
बिल्कुल।
चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, किताब एक विचार के रूप में। इसका क्या मतलब है? किताब किस चीज का प्रतीक है हमारी संस्कृति में?
ज्ञान का, सच का, अधिकार का, स्थायित्व का, है ना? जब हम कहते हैं अरे ये तो किताब में लिखा है, तो उस बात का वजन बढ़ जाता है।
हाँ, जैसे वो पत्थर की लकीर हो गई।
बिल्कुल। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। प्लेटो ने भले ही लिखने की आलोचना की थी कि यह याददाश्त को कमजोर करता है, लेकिन उनकी आलोचना ही दिखाती है कि लिखे हुए शब्द को कितनी ताकत मिल चुकी थी। शिलालेख हमेशा से ताकत और अमरता का प्रतीक रहे हैं।
और धार्मिक ग्रंथों की तो बात ही अलग है। बाइबल, कुरान, वेद, गुरु ग्रंथ साहब, ये सिर्फ किताबें नहीं, पवित्र वस्तुएं मानी जाती हैं।
हाँ, इनमें लिखे ज्ञान को एक तरह से परम सत्य का दर्जा मिला हुआ है। किताब में दर्ज होना ही किसी चीज को लेजिटिमेसी, वैधता देता है।
और ये विचार हमारी भाषा में भी खूब दिखता है ना? जैसे हम कहते हैं प्रकृति की किताब पढ़ना,
हाँ, या जिंदगी का नया पन्ना पलटना,
या कायदे कानून से चलना,
गो बाय द बुक,
या किसी को खुली किताब की तरह पढ़ लेना। ये सब मुहावरे दिखाते हैं कि किताब का आइडिया हमारी सोच में कितना गहरा बैठा हुआ है।
बिल्कुल।
लेकिन आज के डिजिटल युग में इस विचार का क्या हो रहा है? क्या विकिपीडिया पर लिखी बात उतनी ही आधिकारिक मानी जाती है जितनी किसी प्रिंटेड एनसाइक्लोपीडिया की?
यही तो सवाल है। बोर्सो कहती हैं कि किताब का जो विचार था, एक स्थिर पक्की जानकारी का स्रोत, वो अब बदल रहा है। ज्ञान अब ज्यादा नेटवर्क जैसा है, तरल है, लगातार अपडेट होता रहता है। तो हमें शायद सोचना पड़ेगा कि क्या किताब का पारंपरिक रूप ही सच्चाई की गारंटी है।
शायद हाँ, हमें इस रिश्ते पर दोबारा गौर करना होगा।
और आखिरी थीप है किताब एक इंटरफेस के रूप में। इंटरफेस मतलब एक जरिया जिससे हम जानकारी से जुड़ते हैं। ये कैसे काम करता है किताब के मामले में?
देखिए, ये पॉइंट पिछले सारे पॉइंट्स को एक तरह से जोड़ता है। किताब एक टेक्नोलॉजी है ना? और हर टेक्नोलॉजी का एक इंटरफेस होता है, एक तरीका जिससे हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरफेस तय करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
जैसे स्क्रोल का इंटरफेस था, एक लाइन में पढ़ना, सीक्वेंशियल। कोरेक्स का इंटरफेस था रैंडम एक्सेस, कहीं से भी पढ़ो। ये एक बड़ा बदलाव था इंटरफेस में।
और कोडेक्स ने सिर्फ पन्ने पलटना ही आसान नहीं किया, उसमें और भी चीजें थीं, जैसे आपने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स।
बिल्कुल, विषय सूची, इंडेक्स, पेज नंबर, फुटनोट्स, ये सब कोडेक्स इंटरफेस के हिस्से हैं। ये छोटे लगते हैं पर ये यूजर इंटरफेस डिजाइन की बहुत बड़ी सफलताएं थीं। इन्होंने हमारे सोचने, पढ़ने और ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बदल दिया।
2000 साल से चल रहा है ये इंटरफेस।
हाँ, छपी हुई किताब एक कमाल का बहुत इंट्यूटिव यानी सहज इंटरफेस है जो इतने लंबे समय से कामयाब रहा है।
और अब डिजिटल इंटरफेस है जैसे किंडल या फोन पर रीडिंग एप्स, इनमें क्या नया है और क्या छूट रहा है?
नया तो बहुत कुछ है। आप हजारों किताबें साथ रख सकते हैं, सर्च करना आसान है, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, हाइपरलिंक से दूसरी जगहों पर जा सकते हैं।
हाँ, ये सब तो फायदे हैं।
लेकिन कुछ छूट भी रहा है। वो हाथों में किताब पकड़ने का एहसास, कागज की खुशबू और शायद वो सहजता जिससे हम कागजी किताब में पन्ने पलटकर बहुत पीछे या आगे जाते हैं, वो किंडल पर उतना आसान नहीं लगता।
हाँ, वो स्पेशल मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है कि कौन सी बात किताब में कहाँ थी।
बिल्कुल, और ये हमारे पढ़ने के तरीके को भी बदल रहा है। शायद हम ज्यादा तेजी से पढ़ते हैं, स्किम करते हैं, एक जगह टिक कर पढ़ना कम हो रहा है।
और भविष्य में वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाली किताब या इशारों से चलने वाली कविता, ये सब क्या है?
ये नए इंटरफेस बनाने की कोशिशें हैं। आर्टिस्ट बुक्स, डिजिटल लिटरेचर, ये सब कहानी कहने और जानकारी देने के नए तरीके खोज रहे हैं। यहाँ लेखक और पाठक, टेक्स्ट और इमेज, फिजिकल और डिजिटल, इनके बीच की लाइनें धुंधली हो रही हैं।
तो बोरसुक का निचोड़ क्या है? किताब का भविष्य क्या है?
उनका निचोड़ ये है कि किताब मर नहीं रही है, वो बस नए इंटरफेस अपना रही है, विकसित हो रही है। बल्कि डिजिटल के आने से हमें ये ज्यादा समझ आया है कि कागजी किताब की असली ताकत क्या है, उसका टिकाऊपन, उसका फोकस, उसकी भौतिकता।
तो भविष्य में शायद दोनों तरह की किताबें साथ साथ चलेंगी।
हाँ, लगता तो यही है। एक डाइवर्स इकोसिस्टम होगा जिसमें अलग अलग रूप और इंटरफेस होंगे। ई बुक अंत नहीं बल्कि कहानी का अगला अध्याय है।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं? पहला तो शायद यही कि भौतिकता मायने रखती है। मटीरियलिटी इज मीनिंग।
हाँ बिल्कुल, किताब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और उसका अनुभव पर असर पड़ता है। जैसे कॉलेज की भारी टेक्स्ट बुक उठाने का एहसास अलग होता है और हल्की नॉवल पढ़ने का अलग।
दूसरी बात, किताब एक विकसित होती तकनीक है, ये कोई स्थिर चीज नहीं है। मिट्टी की गोलियों से शुरू होकर कोड तक का सफर।
सही, ई बुक कोई खतरा नहीं है, इसी विकास का हिस्सा है। जैसे फोन बदला, वैसे किताब भी बदल रही है।
तीसरा, रूप और सामग्री अलग नहीं है, फॉर्म एंड कंटेंट आर इनसेपरेबल। किताब का डिजाइन ही उसके संदेश का हिस्सा है।
बिल्कुल, अखबार का लेआउट खबर को असरदार बनाता है, वैसे ही किताब का डिजाइन पढ़ने के अनुभव को।
चौथा, किताब एक यूजर इंटरफेस है। ये शब्द हमें स्क्रॉल, कोडेक्स, किंडल सबको एक नजरिए से देखने में मदद करता है।
हाँ, और ये याद दिलाता है कि पढ़ना एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसे डिजाइन गाइड करता है। जैसे कोई ऐप इस्तेमाल करना आसान या मुश्किल लगता है, वैसे ही किताब का इंटरफेस भी आता है।
और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है आज के माहौल में, किताब की मौत एक मिथक है। द डेथ ऑफ द बुक इज अ मिथ।
हाँ, नई तकनीक पुराने को खत्म नहीं करती बल्कि उसे नया संदर्भ देती है। डिजिटल ने हमें प्रिंट की खासियतें जैसे टिकाऊपन, फोकस में मदद और वो स्पर्श का अनुभव और ज्यादा समझा दिए हैं।
जैसे रेडियो के आने से अखबार खत्म नहीं हुए, टीवी के आने से रेडियो खत्म नहीं हुआ।
बिल्कुल, और बुरसुक की किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ कोट्स जैसे।
हाँ,
जैसे एक आइडिया ये है, अगर हम उसे अपने शब्दों में कहें, किताब एक ऐसी तकनीक है जिसे हम भूल ही गए हैं कि वो एक तकनीक है।
हम इसे इतना स्वाभाविक मान लेते हैं कि इसकी इंजीनियरिंग पर ध्यान ही नहीं देते।
हाँ, दूसरा, डिजिटल रूप प्रिंट की जगह नहीं लेते बल्कि उसे नया संदर्भ देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भौतिक किताब क्या सबसे अच्छा करती है।
यानी ई बुक्स ने कागजी किताबों की अहमियत और बढ़ा दी है, उनकी यूनिकनेस सामने ला दी है।
तीसरा, किताब हमेशा से एक इंटरफेस रही है। इसका स्वरूप पाठ के साथ हमारी बातचीत को आकार देता है, और ये मिट्टी की गोली से लेकर आईपैड तक सभी के लिए सच है।
मतलब डिजाइन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, चाहे माध्यम कोई भी हो।
और चौथा, यह पूछना कि किताब क्या है, यह महसूस करना है कि जवाब कभी एक जैसा नहीं रहा।
वाह, यानी किताब की परिभाषा ही बदलती रही है।
बिल्कुल,
वो हमेशा अडेप्ट करती रही है। शायद यही उसके इतने लंबे चलने का राज है।
बिल्कुल, इसका लचीलापन ही इसकी ताकत है।
तो ये सारी बातें तो बहुत दिलचस्प है, पर इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम आम लोग इन आइडियाज का क्या करें?
देखिए, पाठकों के लिए तो सबसे पहली चीज है कि पढ़ने के प्रति एक नई समझ पैदा हो सकती है। अगली बार जब आप किताब उठाएं तो शायद आप उसके कागज, उसकी बाइंडिंग, उसके फॉन्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।
हाँ, और शायद हम ये भी समझ पाएं कि क्यों कभी हमें किंडल ज्यादा सुविधाजनक लगता है और क्यों कभी कागज की किताब ही अच्छी लगती है।
बिल्कुल,
अलग अलग जरूरतें, अलग अलग फॉर्मेट।
बिल्कुल, हम ज्यादा जागरूक पाठक बन सकते हैं, और जो लोग लिखते हैं या डिजाइन करते हैं उनके लिए तो ये सीधा संदेश है। माध्यम ही संदेश है, सिर्फ शब्द नहीं, पूरी किताब मायने रखती है।
उन्हें शायद ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचना चाहिए कि किताब कैसी दिखे, कैसी महसूस हो।
हाँ, और वो कोडेक्स की सफलता से भी सीख सकते हैं कि एक अच्छा यूजर इंटरफेस कैसे बनाया जाता है जो सहज हो, टिकाऊ हो और काम आए।
शिक्षकों और छात्रों के लिए भी ये बहुत काम का हो सकता है, मीडिया लिटरेसी के लिए।
बिल्कुल, ये समझने के लिए कि कोई भी जानकारी हम तक कैसे पहुंचती है, चाहे टेक्स्ट बुक से, वेबसाइट से या सोशल मीडिया से, उसका इंटरफेस कैसे हमारे अनुभव को बनाता बिगाड़ता है, ये डिजिटल दुनिया को समझने का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है।
और जो लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो नए रीडिंग डिवाइस डिजाइन कर रहे हैं,
उनके लिए सोचना जरूरी है कि पढ़ने का अनुभव सिर्फ आंखों का काम नहीं है। क्या वो फिजिकल किताबों वाला स्पर्श या वो ध्यान केंद्रित करने वाला माहौल अपनी टेक्नोलॉजी में ला सकते हैं? कोडेक्स ने बार बहुत ऊंचा सेट किया है।
और शायद हम सबके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम टेक्नोलॉजी को लेकर जो घबराहट महसूस करते हैं वो थोड़ी कम हो सकती है।
ये किताब एक लंबा नजरिया देती है, दिखाती है कि बदलाव तो हमेशा से होता आया है। संस्कृति खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। चिंता करने के बजाय जिज्ञासा रखना बेहतर है।
बिल्कुल, तो इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि किताब सिर्फ जानकारी का डब्बा नहीं बल्कि एक कमाल की लगातार बदलती हुई तकनीक है। उसकी फिजिकल बनावट बहुत मायने रखती है। हमारी शेल्फ पर रखी वो साधारण सी चीज हजारों साल के इनोवेशन का नतीजा है।
हाँ, और बुरसुक का आशावाद बड़ा समझदार किस्म का है। वो किताब के लचीलेपन और खुद को नए सिरे से गढ़ने की उसकी क्षमता पर भरोसा करती हैं।
मेरे लिए सबसे रोमांचक बात ये जानना थी कि प्रयोग और नयापन हमेशा से किताब के इतिहास का हिस्सा रहे हैं। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि भविष्य में किताब और कौन कौन से रूप ले सकती है। ये हमारी कहानियां कहने, ज्ञान बांटने और सहेजने की जो गहरी मानवीय इच्छा है, उसी का प्रतिबिंब है जो हर जमाने में नया आकार ले लेती है। शायद यही किताब की असली ताकत है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।